Hasta luego, Luis. Hasta luego.
आपका स्वभाव देख करके बहुत ही आनंदित हूँ। आज आपके समक्ष बाल भाई से विचार विमर्श करके समदर्शन पर मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक अनुभव आपके समक्ष प्रकट करूंगा, उसे आप सुने, मनन करें और जीवन में उतारें। अक्सर जगत की समस्या को आज का पठित समाज भी ठीक से न समझने कारण बहुत व्यवस्थित है। रचनाएं अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन आपका निर्माण है व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर जगत की व्यवस्था को समझ लें तो हमारी परेशानियां बहुत दूर हो जाएंगी। प्रिय आत्मन, कर्म की स्वतंत्रता पूरे विश्व में नर और नारी को प्राप्त है। थोड़े दिन पहले एक पठित समाज समक्ष उपस्थित हुआ। रमन सुटेर में महीने में दो चार प्रोग्राम होते ही रहते हैं, कभी लघु रुद्र का, गणेश याग का, नवचंडी का, मारते हवन का, कुछ न कुछ होता ही रहता है। ऐसे अवसर पर कई बार आपके विचार सागर करते हुए कुछ नए लोग आ जाते हैं, बातचीत होती है। थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति आए, बड़े अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, कहा स्वामी जी जिज्ञासा है, शंका नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो कर्म है उसका फल कोई टाल नहीं सकता, तो फिर पूजा पाठ करना, साधु संतों ब्राह्मणों की सेवा करना, हरिद्वार या बनारस जाना, दान करना, ये सब क्या? हमने जवाब दिया कि अगर आप बीमार पड़ते हैं, बीमारी शरीर की कमजोर है, एक स्थिति है, आप बीमार पड़ने पर एक कमजोरी की अनुभूति आप करते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? तो डॉक्टर के पास। कोई और बात हुई तो वकील के पास जाते हैं। जरूरत पड़ी तो सभी जगह जाते हैं। आप फिर क्यों जाते हैं? अगर आप पर तकलीफ नहीं है, भगवान ने आपको सुखी रखा है, आपने एक मंजिल मकान बनाया, दो मंजिल बनाया, तीन मंजिल बनाया, जमीन बढ़ाते जा रहे हैं, कोठी बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? स्वामी जी आप ही उत्तर दीजिए। आज जो कुछ हमें प्राप्त है ये तो प्रारब्ध है, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए भी श्रम करना पड़ेगा। और आज जो हमारे पास सुख है, अगर उस सुख की रक्षा करना चाहे तो भी श्रम करना पड़ेगा। बढ़ाना चाहे, विस्तार करना चाहे तो भी श्रम करना पड़ेगा। आपके पिता ने बैंक में 50 लाख रुपए आपके नाम रखा है, तो बढ़ाना है तो आपको भी काम करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपके पिता ने बैंक से 50 लाख लेकर के आपके लिए कोठी बनाया और आपको दे करके वापस चले गए, तो 50 लाख रुपया जो बैंक से आपके पिता ने लिया, आप उसके वारिस हैं, उस मकान में रहते हैं, बैंक को चुकता करने के लिए, पेमेंट करने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। सुख की रक्षा और सुख को बढ़ाने में भी हमें कर्म करना है और दुख में से निकलने के लिए भी हमें कर्म करना है। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा। हम लोग सभी कर्म कर रहे हैं, लेकिन परेशान क्यों है? जो विचार आज आपके सामने रखना है तो आपके लिए है, हमारे लिए है, पूरे विश्व के लिए है। कर्म के बिना आप नहीं रह सकते, तो कर्म हम करें कैसे? यहाँ पर जाति पाति की बात नहीं है, बात आपकी है, आपके संस्कार की है। हमें किसी के संस्कार की नकल नहीं करनी है। सबसे पहले कि हमारे अंदर विस्तार की जो भावना है, उसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? नर और नारी की बात कर रहा हूं, जो पशु हैं उनके विकास की सीमा है, जो पशु और जड़ हैं उनके विकास की सीमा है। शरीर जड़ है, लेकिन उसका स्वामी जो है वो सच्चिदानंद है, चैतन्य है। उस चेतना की, उस शक्ति की कोई सीमा नहीं है। या विचार कीजिए, पति समाज भी मेरे समक्ष बैठा हुआ है, मिट्टी खाने पर भगवान कृष्ण ने बाल अवस्था में माँ यशोदा को मुख में ब्रह्मांड दिखाया। पहले इस पर वैज्ञानिक तवज्जो नहीं देते थे, ये केवल यशोदा और कृष्ण की बात नहीं है, ये हमारी आप सब की बात है। आज विज्ञान भी कह रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हम परमात्मा में से आए हैं। आज वैज्ञानिक भी कह रहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कि हम अंतरिक्ष में से प्रकट होते हैं और वापस अंतरिक्ष में जाते हैं। अंतरिक्ष है क्या? जिसे हम पंच महाभूत मानते हैं, पंच महाभूत का सघन होना हमारा आपका पिंड है। नर या नारी के रूप में आए, हमारे अंदर जो चेतना है, इंटेलेक्ट है, वो इंटेलेक्ट के कारण हम जितना विस्तार करना चाहें कर सकते हैं और जितना नीचे भी गिरना चाहें गिर सकते हैं। आप सबके शुभकामना से, वैज्ञानिकों से भी मेरा संबंध है। वैज्ञानिक कहते हैं, मैं बहुत तर्क नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता है कि व्हाट इज रियलिटी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके पीछे रहस्य क्या है, सत्य क्या है जो आपको समझना है। मैं तर्क नहीं करता, उनकी बात मान लेता हूँ। ठीक है, वैज्ञानिक कहते हैं रामायण एक कल्पना है, महाभारत एक कल्पना है, लेकिन मैं भी वैज्ञानिक हूँ। मैं कहता विज्ञान क्या कहता है, कल्पना का आधार भी सत्य है। कहीं सत्य है तभी आप कल्पना कर सकते हैं, कहीं सत्य का अस्तित्व है इसलिए आप सोच सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहां से लिया, जब आश्चर्य हुआ सीता को कि सोने का मृग है, कितना आश्चर्य है, इसे मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, आप लाइए। कहानी तो आप जानते हैं, लेकिन वहां पर जो एक वैज्ञानिक इशारा किया गया है वो समझिए। इसका अस्तित्व तो कहीं न कहीं है और कई अस्तित्व तो मिल करके माया से रचा गया है। जैसे मिट्टी में से आप शेर भी बना सकते हैं, घोड़ा भी बना सकते हैं, और आप अपनी कल्पना से, ये वैज्ञानिक बात है, मिट्टी में से आधा शरीर आप घोड़े का बना सकते हैं, मुंह शेर का भी बना सकते हैं, लेकिन है तो पूरी मिट्टी की मिट्टी। आप आश्चर्य होगा कि शरीर घोड़े का है और मुंह शेर का है, अस्तित्व में कहीं घोड़ा भी है कहीं शेर है, केवल माया के कारण दोनों मिलकर बन गए, इसलिए हे सीता ये माया है, इसलिए तेरे पास आश्चर्य लगे। बाकी है अस्तित्व, यार विचार कीजिए आपका विज्ञान क्या करता है। हमारी ये बात का अध्ययन वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन हमारा नाम नहीं लेते। आपकी कृपा से काफी अध्ययन भी है, किया भी है और आज भी करता भी रहता हूँ। मैं अथॉरिटी हूँ, व्हाट आई थिंक एज अथॉरिटी नोबडी कैन चैलेंज। मैं जो बोलता हूँ किसी आधार पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम द फाइनल वर्डर। मैं एक संत हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, मेरा जजमेंट कोई काट नहीं सकता, क्योंकि बहुत सोच समझ करके आपके सामने बोलता हूँ और पूरे विश्व के सामने बोलता हूँ, ऐसा नहीं केवल आपके सामने। यार विचार कीजिए, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊं। वास्को डिगामा भारत आया, लेकिन लाने वाला सूरत का एक माची परिवार है जिसे लोग भूल गए। आप बताइए सही। मैं प्रणाम करता हूं, मैं तो पूरी वर्षा को अपना कुटुंब मानता हूं, द होल अर्थ फैमिली, चाहे अमेरिका की बात होगी, न्यूजीलैंड की बात होगी, पाकिस्तान की होगी, चाइना की। एक संत के लिए पूरा विश्व परिवार है, लेकिन फिर भी जहां जन्मा है उसका गौरव है, भारत का मेरे मिट्टी में जन्मा उसका गौरव है। भारत की इज्जत करते हुए मैं सबकी इज्जत करूंगा, लेकिन भारत की इज्जत बिगाड़ कर मैं किसी की इज्जत करने वाला नहीं। आती है बातें मेरे सामने, मेरा संबंध है ही आप लोगों से। या विचार कीजिए, हमारी अपनी बात लीजिए, और जब लोगों से मैं बात करता हूं तो कहते हैं स्वामी बड़ी अच्छी बात। इसी बात को जरा आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। आइए महाभारत, भीष्म का एक विचार सुनिए, भले कल्पना है, वैज्ञानिक कल्पना है लेकिन सत्य। भीम का विचार है, या विचार के लिए एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, पूरा महाभारत अपने सामने रखी है, ये सब घटनाएं लेकिन विज्ञान कहता है ये घटनाएं भले काल्पनिक है लेकिन जिम्मेदार आदमियों के सामने परेशानियां आती हैं। आप सब जिम्मेदार हैं, उस कहानी को दोहराना नहीं है लेकिन कहां कहां फिसल जाते हैं, कहां कहां हमारे सामने विगत से विगत परिस्थिति आती है, उसमें से निकलने के लिए रामायण महाभारत पढ़ना है, न कि उन कहानियों को दोहराने के लिए। परेशानी कहां पैदा हुई सबसे पहले लीजिए, भले कल्पना आज भी वही देख रहा हूं, द्रौपदी ने कहा दिया देख संतानंदी, तो सबसे पहले वाणी का मैं बड़ा प्रसन्न हूं आप इसका विस्तार कर रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न और विस्तार हो रहा है, होता रहेगा, जहां संत आते हैं वहां धीरे धीरे बहुत होता है। एक कठोर बात कहूंगा, अच्छे संत जीते जीते, अच्छे संतों का जीते जीते इतना विस्तार नहीं होता जितना जाने के बाद होता है, इसकी बात है, चाहे विवेकानंद थे कि अरुण घोष थे कि रामकृष्ण थे, आपके पास एक अच्छा संत है विस्तार इतना होगा कि देखिएगा, लेकिन अभी नहीं, जब दुनिया को ले जाओगे ये फैक्ट बता रहा, ये सच बता रहा, हमें कहाँ जाना है, जहाँ चाहे वापस जाना है, अभी आप लोग जहाँ चाहे वापस जाएंगे और कहाँ जाना है, कोई समझ जाएगा, कोई बीजिंग ऑर्डर जाएगा, कोई कल जाएगा, और हम लोग समझ चुके हैं इसलिए वापस जाने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो आपको समझाना चाहता, जो लोग मेरी जीवनी जानते हैं, जानते हैं कैसे घर से आया हूं, सुखी घर था, प्रशंसा की बात नहीं करता, चाहे अच्छे विद्वान मिले, अच्छे मंत्री, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे संत, या तो बहुत बड़े घर के होंगे या तो बहुत ही गरीब घर के होंगे, बीच वाले बहुत परेशान करते, परिवर्तन दो ही आता है, या तो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट या तो मिनिमम, या तो भगवान बुद्ध की तरह या तो कबीर की तरह, बीच वाले तो बस उनके नाम का खा के गुजारा कर रहा है, और बात कर देखो भोजन पहले बोले के बुद्धम शरणम और बाद में क्या कहे भोजनम शरणम, बस भगवान बुद्ध की जय। एक बात कहता, एक विचार देता, तो मैं स्वाभिमान के साथ कह रहा हूँ, ज्ञान के साथ बड़े अच्छे घर से आया, बहुत कुछ था, लेकिन मैं अपने दिल की बात बता रहा, मैंने तो अच्छी तरह पढ़ा है और वो मैं किस तरह समझ चुका हूँ आपको बताऊंगा, और आप भी समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर का जो विचार है वो पहले मैं कह दूंगा, अपने अंदर का विचार मैं कह दू, फिर थोड़ी माया की बात करूं, थोड़ी प्रकृति की बात करूं, बात समझ रहा। मेरे प्रिय आत्मन, मैं टैगोर को बहुत मानता हूँ, विवेकानंद टैगोर जैसे दुनिया में सुगंध वाले हैं सबको मानता हूँ, मैं तो शेक्सपियर अमेरिकन लान फेलो को सबको मानता हूँ, जैसे हमारे उर्दू शायर हुए बच्चे आज भी जो है सबको मानता हूँ, थोड़ा बहुत परिचय भी है, मेरे को शौक रहा है, मैं अपनी एक अच्छाई बताना चाहूंगा, पढ़ते समय पेपर के माध्यम से या किसी मान पता चले कि कोई विद्वान प्रयाग में इलाहाबाद में आया है, कोई आर्किटेक्ट आया है, कोई कलाकार आया है, तो सारी सीमाएं तोड़ करके कितने भी नियम, लेकिन छोटा बनकर के उनके पास जाकर ये सीखता था कि ये धरती पर से आसमान तक कैसे पहुंचे वो जानने के लिए हमेशा जाता, हमेशा, चाहे वो सहनाई नवाज हो, चाहे बिस्मिल्लाह खान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रविशंकर हो, कोई भी मुगराज आनंद हो, कोई भी हो, चाहे आत्मा, ये हमेशा जिज्ञासा रहे, ये लोग जन्मे और इतने ऊंचे कैसे गए, सबसे पहले ये सोचा मैं आपकी जीवनी सुनना चाहता हूँ, जो अगर सुना सकें कैसे ऐसा, और बड़ी प्रेरणा मिलती, तो एक शौक था अच्छी चीज का समझने का जानने का, बड़े प्यार से करता, तो मेरे मन में जो घर से संस्कार मिला, पिता से मिला और अच्छे लोगों से मिलने से मिला, इसलिए मैं विस्तार के पक्ष में हूँ। लेकिन जब टैगोर का पढ़ा तो बड़े प्यार से कहता हूँ, टैगोर ने एक शब्द बहुत सुंदर हमें आपको दिया है, आए व्यक्ति हमारे यहाँ पे बात, आए व्यक्ति अगर तो अपने जीवन को बना ले तो संस्थाएं तो अपने आप बन जाएंगे, और तुमने संस्था ही बनाई, घर बनाया, कोठी बनाई, लेकिन कोठी बना करके नाम तो कमा लिया, पैसा कमा के नाम तो कमा लिया, विस्तार तो कर लिया कोठी का, जमीन का, लेकिन उसके साथ इंसानियत का भी विकास हुआ कि शैतानियत का हुआ? मैंने अक्सर देखा है, आज हम पैसे वाले हो गए, आज हम कोठी वाले हो गए। एक कहानी सुना, कभी एक व्यक्ति पैदल चलता था लेकिन संतों के कृपा से कोठी वाला हो गया, गाड़ी वाला हो गया, समाज में नाम हो गया। एक फकीर आया, ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, और मनोवैज्ञानिक कहानी का आधार भी सच है, आज जो लोग ऐसे होंगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक कहानी हमारे वड़ा की, उसमें किसी का नाम नहीं है, लेकिन है भी आज भी ऐसे लोग। एक फकीर आया, वो कहता है मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा जल चाहिए। गरीब से बना हुआ धनिक व्यक्ति, समाज में जिसका नाम था, जिसकी इज्जत थी, वो कहता फकीर बैठो। थोड़ी देर बाद फिर फकीर कहता हाथ में बैठा तो मुझे आता है पानी मिलेगा, लेकिन कितनी देर में पानी आएगा? कहते आदमी बाहर गया है, वो आ जाए तब कितनी देर लगेगी? कहा 10 मिनट। ये कहानी है मानो 10 से 20 मिनट हुआ। फिर फकीर पूछता है ये आपका आदमी जो बाहर गया है कब तक आएगा? कहा कुछ काम ज्यादा होगा, शायद देर लग सकती है। तो कहा यहाँ जितने बैठे हैं सब परेशान बैठे हैं, यहाँ कोई आदमी नहीं बैठा है, आदमी आएगा तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये आदमी नहीं है। और फकीर चलता तुम भी कभी पैदल चलते, और आज किसी संत की कृपा से कुछ हुआ तो फकीरों को पहचानते ही है, क्यों तुम्हारे पर पहचान है। तो रिश्तेदारियों में भी देखा तो सबसे पहले बालू भाई उदय कानी फलिया का था, इसका विस्तार हो रहा है, होता रहेगा, इसका विस्तार होने में समय भले लग जाए, लेकिन इंसानियत का, मानवता का विस्तार कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एक गरीब को गाली देते हो, आपको कोई गाली देता बुरा क्यों लगता है? मैं चाचा जी के साथ गांधीनगर गया, बहुत प्यार मिला, अरे नहीं हम गले मिले, प्यार मिला, लेकिन मुझे भी चाचा जी से पूछिए, 3 घंटे अच्छे कमरे में बैठा गया, लाइन में नहीं। वो संजय ने कहा कि स्वामी जी कमरे में बैठा है, मीटिंग में। तो अगर मैं जो आप सबका जो कुछ भी हूँ उसमें अहंकार ना है, 3-3 घंटे कमरे में बैठना पड़ा, तो आप जब आते जल्दी से क्यों बोलता हूँ? क्योंकि 3 घंटे की परेशानी मुझे भी मालूम। कई बार कहते स्वामी जी ऐसा, और धुरानुमान ये सब जा गरीब आए तो मैं पहले मिलता हूँ, करोड़पति से बात नहीं मिलता। आप देख लो कभी आ जाए। एक ने कहा स्वामी जी, स्वामी जी मैंने कहा पहली रोटी मैं गरीबों की खाया हूँ, और जब मेरा नाम हुआ तब आप आए, इसलिए पहले गरीब से मिलूंगा फिर आपको। ये बात ये प्रेम से स्वाभिमान की बात कर रहा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रस्ते चलते भी देख रहा, छोटे ट्रेन में देख रहा हूँ, प्लेन में देख रहा हूँ, कोई सीट के लिए झगड़ रहा है, इंसानियत इतनी तो नहीं समझता मैं कौन हूँ। अरे कई बार मेरे से बोलते हैं, मेरे से कहते स्वामी जी आप मुझे नहीं जानते। मैं कहता मैं अभी तक अपने को नहीं जानता, आप तो क्या। हाँ मेरे सामने बोलते हैं कि आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैंने कहा मैं अभी तक अपने को नहीं जानता, तो आपको क्या जानो। एक बात कहता तो सबसे बड़ी बात, मैं इंसानियत और मानवता के पक्ष में हूँ। और याद रखिएगा, मानवता सबसे अच्छी विष्णु में है कि चाहे कोई लात मारे लेकिन फिर भी कहते आपको नहीं चोट लगी। और मैं कहता हूँ बालू भाई, आप सब विष्णु के स्वरूप हो, भगवान हो, मारने दो लात, लेकिन लक्ष्मी आपको छोड़ के नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप आएगी। मानने की भी कोई जरूरत नहीं। जब विष्णु का स्वयंवर उठा, अच्छे अच्छे विद्वान बैठे, लक्ष्मी ने क्या कहा कि जो नहीं आया है उसके गले माला डाल। सारे आए थे लेकिन विष्णु नहीं आए थे। विष्णु क्यों नहीं आए थे? वो अपने काम में इतने थे, फुर्सत नहीं थी। आप अच्छा काम करो, कहीं मांगने मत जाओ। मैं कहता लक्ष्मी अपने आप आएगी, आपको कोई चिंता करने की, आप सब कहता। और काम करते हुए भगवान विष्णु हजार थनों के नाक पर या सोचो तो सही। आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं भारत की चीजों को समझो, जानो, विचार करो। शांताकार भोजन है ना, भुजंग पर हजार थनों पर शांति से लेटा हुआ हमारा विष्णु, और लक्ष्मी का आकांक्षा नहीं किया, लक्ष्मी खुद आ गई। ये जगत बालू भाई आप सबको कहता हूं, हजार थनों वाला है, लेकिन जब शांत रहोगे और अपने कर्म को शांति से करते रहोगे, अर्थात किसी का अपमान नहीं करोगे, तो लक्ष्मी खुद आएंगी और यहाँ सब कुछ हो जाएगा। आपके घर की भी बात करता हूँ, कुटीर की भी बात करता हूँ और आश्रम की भी बात करता हूँ। आज कितने लोगों ने, क्योंकि सत्य मैं नहीं बोलूंगा कौन बोलेगा, या विचार कर कितने लोग मर्यादा तोड़ करके करोड़ों की कोठियां, करोड़ों का आश्रम बना लिए, लेकिन आज हालत क्या है? बस इतना ही सारा करता हूँ। जहाँ तीन तीन दिन तक लाइन लगती थी दर्शन की, आज पता नहीं चल रहा है किस गुफा में भाग है। ये कर्म कर सकता हूँ। इसलिए भारतीय संस्कृति का पूरा आधार, हम अर्जुन की बात करते हैं, जब अर्जुन को ज्ञान हुआ तो कर्म में लग गया। और किसने यही समझाया कि वर्तमान तेरे हाथ में, आज पढ़े तो वहां क्या कहा किसने, जब विराट रूप दिखाया क्या कहा अर्जुन, कर्म तेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में छोड़। मैं आपसे कहता हूं, आप सबको आज अपना कर्म करें, जो आपका इष्ट है, चाहे राम है कि कृष्ण है कि शंकर है कि मनीषानंद है कि शंकराचार्य जी है कि कोई पीर है कि फकीर है, वो विदेश में सब आ जाते, विराट में सभी आ जाते। आज का कर्म आप अच्छी तरह करो और कल अपने ईश्वर छोड़ दोगे और कल तुम्हारा सुनहरा होगा, सफलता लेकर आएगा, चिंता करने की कोई जरूरत। लेकिन कोई आसमान से आएगा मेरा काम कर देगा, कोई आसमान से आएगा तो ये कर देगा कि पता नहीं कैसे बीच में बातें आ गई। बीच में लोग कैसे गीता को भूल गए, कुछ समझ में नहीं आता, कैसी हवा चली। मैं तेरे साथ हूं अर्जुन, लेकिन फिर कर्म तुझे करना पड़ेगा। तो अपने वर्तमान को संभाल, भविष्य मेरे ऊपर छोड़। जा मिले कैसे लोग गीता को भूल गए कि बस मंदिर में बैठे रहो काम हो जाए, माला घुमाते रहो काम हो जाए। जा विचार कर, मैं प्योर हिंदू हूँ, शुद्ध हिंदू हूँ, भारतीय हूँ और देश का रक्षक भी हूँ हर तरह से। इसलिए अक्सर कितनी बार मैंने कहा, जो लोग मेरा पुराना इतिहास जानते हो जानते हैं, मैं एक देश भक्त का एक सुंदर का लड़का हूँ। आज भी मेरी टोकरी जब टूटेगी तो पहले देशभक्ति मिलेगी, फिर केला मिलेगा, फिर पैसा मिलेगा, पैसा बाद में मिलेगा, लेकिन पहले देशभक्ति मिलेगी, आप सिद्ध मिलेंगे, नाम मिलेगा। ये संस्कार है, तो आज इस देश की भक्ति में जो मैंने अपने पिता से सीखा, गुरु सीखा, वो सबसे बड़ी बात है। मैं इतना आपसे कहता हूँ, कई बार मैं देखता हूँ मेरे साथ रहने वाले भी ऐसा व्यवहार कर देते, कर नहीं पाता, थोड़ा दिवस हो जाता गुरु के नाते, लेकिन मेरा हृदय बड़ा पिघल जाता है कि मेरे साथ रहने वाले ऐसा क्यों बोलते, ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं। भगवान ने आप इतना बड़ा बनाया, इतना हल्का व्यवहार आप क्यों करते। जब मैं कहता हूँ अपने शिष्यों से कि तुम चंदन हो, और बताता हूँ कि चंदन का सिंचन मैंने किया, तुझे लायक मैंने बनाया, गणेश उठाकर आसमान तक मैंने लाया, तो क्रोध में अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे। दूसरे गालियां क्यों देता है, दूसरे से पैसा लेने के बाद क्यों करता है, लेकिन कमर कैसे चुप हो जाता हूँ, कैसे चुप होता हूँ, पहले भी समझा आज भी समझा। कर्म का एक सिद्धांत है, और आपको समझाऊंगा जब नहीं हो तो चुप हो जाना, समय अपने आप ठीक कर देगा। जो बात मैंने भीष्म पितामह की उठाई थी वही आपसे करना चाहूंगा। भीष्म पितामह सोचते मेरे में इतनी शक्ति है, इच्छा मृत्यु है, और अगर आपको अच्छी तरह महाभारत याद हो तो कर्म के सिद्धांत में बताऊंगा। लेकिन अम्बा जब पराशर ऋषि के पास आई और अपना दुख बताया तो धर्म की बात करने के लिए गुरु आया, और महाभारत पढ़िए, गुरु कहता है, ऋषि कहते हैं, देवव्रत मेरी बात मान ऋषि स्वीकार कर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि नहीं स्वीकार करूंगा, कहते तुझे युद्ध करना पड़ेगा और अच्छी तरह महाभारत पढ़िए। इतनी शक्ति थी भीष्म पितामह में कि बड़े प्यार से कहता, पहले गुरु से आशीर्वाद लिया, गुरु ने कहा बस तुम्हारी विजय हो, गुरु का आशीर्वाद लेकर गुरु के सामने लड़े, लेकिन गुरु ने कह दिया या तो गुरु का वध कर या तो वापस जा, कहा आपके कहने से आपके आशीर्वाद से आपसे युद्ध किया, अब आप कहते मैं वापस जाता हूँ। उसी समय अम्मा घबरा गई थी कि इसको जीतना बहुत ही पढ़िए, आज विज्ञान भी सोच रहा है, लेकिन अम्बा ने बड़ा तप किया, ये किया, और कर्म की बात में बात नहीं। तो जान विचार कीजिए, हम लोग अच्छे गुरुओं में से हैं, कैसी भी बात होगी लेकिन कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे, आप आशीर्वाद ही देंगे तो भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन नहीं नहीं पूरे करना पड़ेगा, किधर जा रहे, आशीर्वाद ही देंगे, कभी नहीं श्राप देंगे, ये गुरु का धर्म है। यार विचार करो, अब जिस बात पे आता हूं आप लोग परेशान होते हैं, सब बताऊंगा। एक विचार भीष्म पितामह का, मेरे अंदर इतनी शक्ति कि गुरु का आशीर्वाद से गुरु को भी कहना पड़ा जाओ, इतनी शक्ति शिष्य में आई, लेकिन क्या मैंने सोचा था कि भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो, फिर भी हुआ। क्या मैंने सोचा था कि तो फिर भी हुआ, बातें कही है, लेकिन ये सब पितामह के विचार को बताना चाहता हूँ, कितनी शक्ति प्राप्त कर लो लेकिन पिछले कर्म से हर चीज अनुकूल नहीं आएगी, जो अनुकूलता आती उसे स्वीकार करो और प्रतिकूलता में से निकलने की कोशिश करो। क्यों होता है, क्यों होता है, वो आपका कर्म है, आप नहीं है। मैं तो मंदिर में जाता हूँ, मैं तो गुरु के पास जाता हूँ, अब अम्बा वाली उस समय अम्बा को स्वीकार करना था, नहीं किया, वही अम्बा शिखंडी बनी और अपना बदला लिया। या विचार एक स्मार जबरदस्त भी कह रहा है कि कर्म आ गया, समय कर, आप भी सोचते कुछ है होता कुछ है, वो कर्म की बात है, इसलिए स्वीकार कर लो मेरा किसी धर्म का कर्म है, लेकिन स्वीकार करके भी अपने धर्म का पालन भागना नहीं पड़े। मेरे सामने बातें आती है, सभी लड़का ऐसा है लड़की ऐसी है, फिर कहता पिता कर बताओ तुम पिता हो, पिता कर क्या है ऐसा। भाई भाई की कोई बात होती है, मैंने कहा नहीं, ये सब पिछड़ा कर्म है जो कुछ आपको बताया, लेकिन इस समय आप बड़े भाई आप कहते हैं, जहां सोचो तो सही विचार तो करो। इसलिए सब दर्शन का अर्थ है विज्ञान की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से बताऊंगा, सब का अर्थ है ठीक समझना। दर्शन कहते हैं विचार साधारण भाषा में, दर्शन को फिलॉसफी, और जिन लोगों ने साइक्लोपीडिया पढ़ा है उसमें फिलॉसफी अर्थ ही होता है, टू अंडरस्टैंड एंड व्हेन यू स्टैंड एंड देन यू अंडरस्टैंड, देन यू अंडरस्टैंड। जब आप अपने को समझ लेते हैं तो जिस रास्ते से अपने को समझते हैं वही दर्शन है। आप अपना दर्शन करें, अपने को समझें, दूसरे को उधार करने की जरूरत नहीं। आज तक उधार चल रहे, विवेकानंद ने कहा, स्वामी रामदेव ने कहा, चलिए आप क्या करते, वो समय था कहा होगा। विवेकानंद ने एक बार बोला था कि आए गरीब को तुम संसद बनाओ और अमीरों को सामने लड़ो, इनको परास्त करो। बाद में विवेकानंद से किसी ने कहा कि आज तो सभा में आपने कर दिया कि गरीबों संगठन बनाओ और अमीरों को लड़ो, तो आपके पास तो अमीर ज्यादा आते हैं गरीब कम आते, नाम हो गया तुम। कहे जब तक हम गुलाम है थोड़ा देश गरीब है, और जो शासन कर रहे हैं खुलेआम नहीं बोल सकता, इसलिए इशारे से कहता हूँ जैसे व्यास जी ने इशारा किया, बाजार संभाल कर हम इशारा कर रहे हैं। जब तक हम गुलाम हैं गरीब कैसे, हम जब तक गुलाम हैं अमीर कैसे। इसलिए है भारत के लोगों, वहां जाति पाति नहीं, भारत का हर नागरिक कुछ भी है, लेकिन अखंड भारत की जो कल्पना है विवेकानंद का, तुम सब एक हो जाओ और देखो फिर किस तरह से भाग्य। गांधी जी ने भी ऐसा किया, लेकिन किस तरह कहा जाता है, कैसे कहा जाता है समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं, आप अपने को समझे, दर्शन है समझना, आगे मैं चलूंगा, लेकिन पहले आप अपने को तो समझ लें, अपने को तो बराबर कर लें। अब भाई क्या आप अपने को समझे, अब व्यवहारिक बात बताता, व्यवहार में जो चीज हमें नहीं ठीक लगती किसी को नहीं ठीक लगती, ये समझ लेना चाहिए। अगर हम आपने मेरा आदर किया तो सभी आदर चाहते, लेकिन मैं आदर चाहता हूँ लेकिन आपका अनादर करना चाहता हूँ, ये कभी नहीं। मैं चाहता हूँ लोग मेरे पास आए नमस्कार करें तो मुझे उसके लायक बनना पड़ेगा, योग बनना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, लायक बनना पड़ेगा। जब आप लायक बनेंगे तो अपने आप लोग हाथ जोड़ेंगे, एक आपसे बात करता और हाथ दिखाने से कोई आपको बड़ा करने वाला नहीं। तो मैं तो बहुत बड़ा पैसे वाला, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो महामंडलेश्वर हूँ, तो मुझे प्रणाम करने थप्पड़ मारूंगा, वो कहा तू थप्पड़ मारेगा मैं लकड़ी मारूंगा, रख अपना ज्ञान अपने पास। इसलिए चाहे आप घर में हैं, चाहे आप बाहर, चाहे आप बैलगाड़ी पर चलते हैं कि 50 लाख की गाड़ी पर चलते हैं, लेकिन मेरे आत्मन बैलगाड़ी की जो इंसानियत है वो कार में बैठने से खत्म नहीं होती चाहिए। जो आप पैदल चल रहे हैं रिकवरी ऑफ फेथ, इसको समझिए समदर्शन का। बालू भाई से विचार करके लिया, बालू भाई बहुत स्वामी समदर्शन, इतने उनकी प्रज्ञा जागृत है, इतना अच्छा विषय किया लाइक रिकवरी ऑफ फेथ। आप पढ़िए, एक प्रश्न आया है डॉक्टर राधा कृष्ण के सामने और आपके चरणों बंधन करते हुए, जो वाइस प्रेसिडेंट से तो मुलाकात की हुई, प्रेसिडेंट उन्होंने तो नहीं हो पाए लेकिन वाइस प्रेसिडेंट हुई, कुछ बातें हुई तो बाद में बताऊंगा। अभी डॉक्टर राधा कृष्ण की ऐसे कर दिया आपसे, एक प्रश्न उठा उसका जवाब दिया। हमारी औलाद की बात की है, संबोधन वैज्ञानिकों को किया, और अभी मैं कहता हूँ वैज्ञानिक होते हुए मैं कहता हूँ जहां तक हम ऋषि लोग पहुंचे अभी वैज्ञानिक नहीं पहुंचे, पहुंचने की कोशिश करता है। ये आपको बताऊ विज्ञान को उदाहरण इसलिए देता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग समझे, लेकिन पंडित समाज को कहता हूँ हमारे ऋषि और वेद और भक्त जहां तक पहुंचे हैं अभी वहां तक विज्ञान नहीं पहुंचे, पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन उदाहरण इसलिए देता हूँ कि आप जो है विज्ञान का आधार पर समझे करें। डॉक्टर राधा कृष्ण कहते हैं मेरे प्यारे विज्ञान को, आपने विज्ञान के बल पर आकाश में लोग उड़ा रहे हो, आप विज्ञान के बल पर पानी के अंदर लोग चल रहे हैं, लेकिन अरे विज्ञान को आकाश में उड़ाकर आपने आदमी को कागड़ा बना दिया, पानी के अंदर चला करके मछली बना दिया, लेकिन मेरे प्यारे विज्ञान को धरती पर इंसान को इंसानियत तथा कैसे चलना चाहिए वो किस यंत्र से दिखाओगे? या विचार करो ये इंसानियत की जो बात है व्यवहारिक बात। स्वामी जी ऐसे लोग नहीं मिलते, थोड़े दिन पहले कोई बात हुई स्वामी जी आजकल ऐसे सब नहीं मिलते, मैंने कहा संत की क्या बात, बहुत बात। मैंने कहा कोई भी आसमान से नहीं करता है, समुद्र में से नहीं आया, परिवार में से आया। और उनको बहुत समझा के अंत में कहा जिस समाज का जिस परिवार का संस्कार खड़ा होगा वो परिवार में याद रखिए वैज्ञानिक कहते हैं, मैं बताऊंगा वैज्ञानिक कहते हैं है ये कल्पना, लेकिन रामायण में रावण और महाभारत में दुर्योधन ये अधर्म के अंतिम बिंदु है। विज्ञान क्या कहता है, शक्ति प्राप्त करके अगर संस्कार नहीं मिला तो रावण कहां तक गिर सकता है, दुर्योधन कहां तक गिर सकता है, ये अंतिम बिंदु है। इसलिए तुम भी गिरोगे, अंतिम बिंदु तक नहीं गिरोगे, लेकिन कुछ हद तक तो गिर जाओगे, तुम्हारा पतन होगा। तो रावण रूप का अंतिम बिंदु है और दुर्योधन पैसे का अंतिम बिंदु है, और आप दुनिया में जितना अत्याचार है या तो रूप के कारण या पैसे के कारण या गर्भ माया या चेतन माया या दोनों माया, चाहे कोई भी हो, मैं तो खुलेआम लोगों से कहता हूं, चाहे कोई आईजी बना कि कलेक्टर बना कि महामंडलेश्वर बना कि आचार्य बना कि सिद्ध बना, लेकिन जब हमारा क्षेत्र कहता है इनके पास सिद्धियां हैं, लेकिन जानते हैं दुर्योधन गलत है, फिर की मदद कर रहे कृष्ण, एक व्यवस्था थी भगवान कृष्ण ने, चाहे आप आईजी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, बहुत बड़े विद्वान हो जाओ, लेकिन खुद गलत काम करोगे या गलत की मदद करोगे तो जैसे एक आईजी जो पेपर आया होगा क्या नाम है, पद भी गया धन भी गया और आजीवन कारावास कर रहा है। इसलिए चाहे भीतर पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य जी हो, चाहे सपनी हो, चाहे कोई हो, जब एक गलत की मदद किए तो सिद्धियां खत्म हो गई। अब तो हमारी आपकी सिद्धियां क्या सीखेंगी गलत की मदद करने से या गलत काम करने से, ये समझना है, भले कल्पना है लेकिन गलत का परिणाम गलत ही होगा। चाहे कुछ हो जाए तो पहले संदर्शन समझो कि आप किधर जा रहे, आप तो किधर जा रहे हैं सुख तरफ जा रहे हैं, और नहीं समझ आए तो मेरे से पूछिए, मैं हूं गुरु। और याद रखिएगा ये कृष्ण की जबरदस्त व्यवस्था है, आज दुनिया मानती है, चाहे मेरे देश की बात हो, चाहे मेरे परिवार की बात हो, चाहे मेरे शिष्य की बात हो, चाहे मेरे बेटे की बात हो, अगर वो दिल खोल कर अपनी बात करेगा, अगर मुझसे कपट नहीं करेगा, छल नहीं करेगा, छल कपट करके कुछ नहीं करेगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो अपने माता पिता गुरु से छल कपट नहीं करता और फिर भी अपना पाप बताता है, हमारा कृष्ण कहता है तूने छल कपट निष्कपट है, इसलिए तुम तेरा सब पाप धो दूंगा, तुझे मुक्ति मिलेगी, मैं भी उसी परंपरा में हूँ। आप छल कपट करके कुछ बोलोगे तो दुर्योधन हो जाओगे और निष्पाप होकर अर्जुन आओगे, भूल भी हुई होगी तो आपको मुक्त कर दूंगा, आपका कुछ भी रहने वाला नहीं है। लेकिन जब छल कपट करोगे तो किसका दर्शन करोगे? किसका दर्शन? अर्जुन भी करता था दुर्योधन, लेकिन जो भाव निष्कपट अर्जुन के साथ कृष्ण का रहा वो भाव दुर्योधन के साथ नहीं। कितने लोग मेरे स्वामी जी, मैं आपका 20 साल करते थे, मैंने कहा कितनी बार कहा कि घर में आतंक न बचा, 5 मिनट चाय लेट हो गए लगे पत्नी को गाली देने, अब यही आपका ईमानदार आगे क्या बताओ। और बेटी को कहता कि पति बाबी भूखा न दे, और हमारी बेटियां क्या करते, गुरु जी ने कहा आधे घंटे माला लेना, जब आदमी जाना होता तभी माला होता, रूठी किसी और बात पर माला से करती तू पराठा बना के बहाना। तो भाई ये तो बहाना थोड़ी है, बहाना क्या, सुरक्षित हूँ, कोई पकड़ में नहीं आता, आप ऑफिसर है, आपका रिजल्ट आया, क्यों आया वो जानता है, कहता है कि मेरी मोटरसाइकिल रास्ते में पंचर हो गए, बहाना बढ़िया है सुरक्षित है लेकिन बात गलत है, बहाना पक्का है मोटरसाइकिल पंचर हुए 12 घंटा तो लेकिन आप जानते हैं कि सच है कि इसलिए बहाने बात से हमेशा हो गया, उसको सीधे सीधे बता नहीं अपना काम एक बात। अब संघर्षण की जो व्यवस्था देना चाहता हूँ महाभारत के आधार पर, आप बड़े सुखी हो जाएंगे, पूरा विश्व मानता है, ये समझो जीवन उतारो। आज हमारा आपका संबंध हुआ एक किसी किसी जन्म का संबंध, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इसे काट भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आपके लिए कोई अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आपके ही दो पुत्र हैं, एक आपका मान करता है कि नहीं करता, वो आपके दोनों कर्म है, एक पुत्र कर्म के ही पैदा, लेकिन मैं जब पूछता हूं तो कहते हैं आप ठीक है, कई लोग मेरे पास आए समझे एक पुत्र मेरा मान रखता है कि नहीं रखता, मैं कहता साधु संतों दर्शन कितना किया, दान कितना किया, पुण्य कितना किया, अब छल कपट करके कितना कमाया, किसका चना दबाया और किसकी जमीन दबाया, ऐसा नहीं, मैं साफ साफ कर देता इस कर्म से मिला, ये जमीन है इसमें 50 पेड़ आम का लगाइए, 5 पेड़ बावर का लगाइए, याद रखिएगा उम्र पे मत जाना, ये पेड़ 5 साल वाला भी आम का बड़े प्यार से कटा फल ही देगा, और थोड़ी दूर पर 1 लाख बरस का बावर भी कांटा ही देगा, 1 लाख बरस से कोई मतलब नहीं। लोग मेरे पास आते महाराज जी 90 साल का हो गया, तो मैं कहता आम के झाड़ हो के बावर के झाड़ हो, पहले वो बताओ क्या 90-90 साल लेके दौड़ रहे, या विचार करो छोटे बच्चे आते इतना प्यार क्यों करता, बेटा बेटी मैं जानता ये कुदरती प्यार जो है कुदरती शब्द है, आप मुझे नहीं करोगे पेड़ को करोगे, बकरी करो करोगे क्या करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए कहीं ना कहीं ये कुदरती चीज है, इसलिए प्रेम और सत्य तो हम धर्म से लेकर आए, कौन सा धर्म से आप सिखाता है, कौन सा धर्म असत्य बोलने की बात करता है बताइए तो सही, जो हम सनातन अपने बोलते उसका मतलब जो लेकर आए, लेकिन संप्रदाय कोई विशेष व्यक्ति सिद्धियों से बनाता है, और जो विशेष व्यक्ति सिद्धियों से बनाएगा यहाँ खूब पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन करता है यू ऑर्गेनाइज समथिंग अगेंस्ट समवन, आप जो संगठन बनाते हो किसी के खिलाफ बनाते हो, इसलिए संगठन करती है आप किसी के खिलाफ, लेकिन सनातन का संगठन नहीं है, वो तो जन्म से लेकर आए, सत्य उत्तर सच का क्या संगठन बनाओगे? संगठन झूठ का होगा। दान देने क्या संगठन बनाओगे? चोरी करने का संगठन होगा। ये आपके इंसान को क्रिया भी है। उसमें वार्नाइज समथिंग इथेंस वार समथिंग डूइंग अगेंस्ट समवन। आज पार्टियां सब वही है, सभी देशभक्त है, लेकिन इनका कलर ये, इनका कलर ये, इनका कलर, तो आप किसी कलर खिलाफ ही तो अलग हो रहे हैं। बाकी ऐसा तो नहीं कि आप जो है देश से अलग होना चाहते, आप परमात्मा से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव डालने के लिए। और फिर मनोविज्ञान आ गया, जहाँ व्यक्ति की पूजा होगी, अगर आने वाले नहीं संभालेंगे तो वो परंपरा इतनी फल जाएगी कि उसे सुधारना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए खुलेआम कहता सत्य और प्रेम की संप्रदाय नहीं है, समुदाय किसी व्यक्ति के है। इसे हर संप्रदाय 500 साल के बाद अगर आने वाले नहीं बदलेंगे तो परंपरा इतनी सड़ जाएगी कि इंसानियत दे जाएगी। उसमें इंसानियत रहने वाली नहीं, छोटी छोटी बात में देखता या विचार को। आज अगर महाभारत पढ़े तो किसकी व्यवस्था देखे? जब दोस्ती कुछ करती है कैसे, तुझे प्रजा का ख्याल नहीं है, देश का ख्याल नहीं, तुझे अपने दुर्योधन के दोस्त ही दौड़गी तभी करेगी। ठीक है, कोई क्षमता तो नहीं, प्रतिज्ञा कर ली और भेद ने कर लिया, लेकिन देश पहले है, समाज पहले, इंसानियत पहले है कि तेरे बाल है? क्या सुंदर व्यवस्था थी। अब यही देख लीजिए, मैं युद्ध में सर तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक ऐसा समय उठाना पड़ा, फिर सीतामा का त्यार में प्रतिज्ञा टूटी। इससे पहले प्रतिज्ञा है अर्जुन की रक्षा की, ये आपकी प्रतिज्ञा नहीं महाभारत किया पितामा, आप राज करते जो लायक होता उसको देते, यहाँ इसे इस क्षेत्र में आपकी प्रतिज्ञा ही आई। इसलिए जिम्मेदार आदमी को सीखना क्या है, पूरा विश्व कह रहा है रामायण महाभारत सीखने के लिए है, कहानी दोहराने के लिए। इसलिए आप जिम्मेदार हैं, आप कभी भी कोई प्रतिज्ञा नहीं करना, समय देकर देता नहीं बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने प्रतिज्ञा कर ली, आज मैं मौल रहूंगा और आश्रम के सामने बैठा हूँ, कोई नहीं है, नदी में कोई नहाने गया डूब रहा है, तो उसको बचाने की हमें, हमारा धर्म है कि प्रतिज्ञा करके किसी को मारने का है। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करूँ, मौल रहूंगा, लेकिन अगर ऐसा अवसर बचाने का आया तो मैं प्रतिज्ञा तोड़ करके उसको बचाऊंगा। यही किस कहता है, क्या तू कर्ण की बात कर रहा है अर्जुन? मुझे तुझे बताना है एक शब्द, माता पिता गुरु के लिए जब अपने बच्चे को बताते हैं वही निष्कपट हो, कपट से बात न करे, निष्कपट हो, छल कपट से बात न करे। तो माता पिता गुरु जो बताते हैं किसी भी तरह याद रखिए, उसमें पाप नहीं है, लेकिन पुत्र पुत्री छल कपट करेंगे तो बड़ा बहुत मुश्किल होगा, फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी, फिर तुम जानो। तो एक सबसे बड़ी बात, समदर्शन को पहले जीवन को समझो। कोई आदमी छोटा बनना नहीं चाहता, पहले विचार को समझो। आज हम धन के बल पर जितने ऊंचे उठ गए, इंसानियत के बल पर नहीं। मैं देख रहा हूं, इसलिए कर रहा, हर देश की बात आपके सामने कर रहा, भ्रमण किया है देखा, लेकिन हमारी संस्कृति जो संस्कार की बात करती है, मैं वो बात करूंगा। यार विचार करो, आपके क्षण का दूर करना चाहूंगा, जो अक्सर मेरे क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आ रहा। यार विचार करो, अभी अम्बा की बात किया, अम्बा ने तब तक के सिकंदे गुरु दुर्बक के यहां दिया कहानी है, एक नियम बनाया गया, और फिर भीतम पितामा का जिस तरह, अगर आप देखें तो भीतम पितामा नियम से नहीं, कर्ण नियम से नहीं, लेकिन एक व्यवस्था आई, आप नियम में जड़वादी न बने। कोई दुष्ट कितना नियम बना ले, लेकिन समाज में से एक बात मेरे से प्रश्न भी किया, स्वामी जी आप तो सब में भगवान देखते हैं? हाँ देखता हूँ, मानता हूँ, तो फिर आप लोग इधर क्यों करते? कोई पूछा, मैंने कहा मेरा हाथ है जब इसमें शर्म पैदा हुई, कैंसर हुआ, तो हम आपको हाथ कटवा, हाथ तो मेरा ही, हमारी संस्कृति पूरे विश्व, मेरा परिवार, मेरा अंग, मेरा स्वरूप, ये विराट पर सभी मेरे, एक खुद भी मेरा है, सब भी मेरा है, मलमूत्र भी मेरा है, ये विराट शरीर का जो छोटा रूप है, विराट जब सघन हुआ तो पिंड बना, उसका पूरा गुण है, ये शरीर पूरा का पूरा मेरा, तो ये मेरे ही भोजन से कब बना, कब तो क्यों निकालते, मेरे ही भोजन से खून बना, खून नहीं निकालते, मलमूत्र क्यों निकालते, इसलिए हमारी संस्कृति कहती है पूरा विश्व मेरा है, लेकिन जो कफ बनेगा समाज के लिए, जो मजबूत बनेगा सड़ेगा, तो जैसे शरीर में से अंग काट देते हैं ऐसे उसे भी काट देंगे, जैसे शरीर में से मजबूत निकालते हैं ऐसे उस दुष्ट को भी निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो, इसलिए मेरा धर्म है हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मजबूत को तो निकालूंगा, क्या मजबूत के खिलाफ हूँ, क्या मैं कब के खिलाफ, लेकिन जानता हूँ अगर इसे अपनाऊंगा, इसे रखूंगा, तो इस शरीर का सत्यानाश हो जाएगा, बचाना है, यही मैं आपसे कहता हूं, आप पहले अपने को बचाइए, नियम कुछ भी हो मैं समझा दूंगा, अपने परिवार को बचाइए, आज रशिया तक वैज्ञानिक कर रहे हैं, पहले आपकी बात कर, रशियन वैज्ञानिक कहते हैं भारत को समझो, जो इस समय नास्तिक थे मानते नहीं, आज हमारी रामायण महाभारत की चर्चा उनके यहां भी हो रही है, समझ रहे हैं, मेरी आत्मा आपकी बात है, एक ऐसी परिस्थिति आई सीता को लंका जाना पड़ा, लेकिन हम वापस आए, मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, ये बार बार जो बात करता है अपना धर्म देखो, अपना धर्म, मैं पिता हूं पिता क्या, मैं बेटा उसका धर्म, मैं पत्नी हूं उसका धर्म, मैं पति उसका धर्म, अब यही धर्म की बात पर मनोवैज्ञानिक कहते हैं पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना, पत्नी की भूल हो सकती है लेकिन पति का कहना, अब यही कहते हैं क्या सुंदर बात होता है, आप दूसरे की बुराइयां क्यों देखते हैं, कोई समझता हो जाता है, लेकिन पति का क्या धर्म है, और थोड़ा सा प्यार से कहो, हम लोग हिंदू है, राम के संतान है, लेकिन आज का राम ऐसी व्यवस्था हो उसकी पत्नी बाप के घर जाए तो कहते गुरु जी मेरी दूसरी शादी का राम, आप हिंदू है, आप अपनी पत्नी नहीं समझ पाए, अब हिंदू सीता ने भी कोई छल कपट नहीं किया, लेकिन सीता कहती है जो भैया किसी को सीता पर दुख क्यों आया, सीता नाम हम सब केवल नारी की बात नहीं, राम का कथन स्वीकार नहीं किया, राम को अच्छे विचार विज्ञान देता, आपको किसी ने अच्छा विचार बताया, ये मत करो आप क्यों करते, यहाँ राम सीता की बात नहीं है, ये हमारी और आपकी बात, फिर जा देखिए बातें तो और बुरी है, लक्ष्मण ने क्या कहा था, जब तक मैं वापस ना हूं आप इस रेखा के अंदर, यही अब वैज्ञानिक कर रहे हैं, आप हिंदू है हिंदू धर्म की मर्यादा है, और ये वैज्ञानिक कर रहे हैं पूरी लंका रावण बन जाती, और यहाँ केवल नारी की बात नहीं, मैं कलेक्टर बना मर्यादा के बाहर गया, मैं आजी बना मर्यादा के बाहर गया, मैं महामंडलेश्वर बना मर्यादा गया, मैं सिद्ध बना मर्यादा के बाहर, केवल सीता के बाद सीता पर जी, जहां विचार कीजिए मनोवैज्ञानिकों का, यहां पर अपने को समझने की कोशिश कीजिए, और आपसे बता आपकी कृपा से वैज्ञानिक को समझने का संबंध है, राम एक शक्ति परमात्मा व्यवहार की दृष्टि से, सीता पत्नी एक जीव, आप ले लीजिए मेरे सामने बातें आ, महाराज जी बेटे को अमेरिका से बुला लो, पति को बुला लो कनाडा से, क्यों सीता ने भेजा था पति को सोने का मृग लाने के लिए और रात में भेजा डालने के लिए और साथे को बुला लो बुला जो हमारी शक्ति है घर की पति पत्नी साथ में। अगर राम होते या लक्ष्मण वहां होता लेकिन दुष्ट की ताकत नहीं थी कि ये मनोवैज्ञानिक बात है। और दूसरी बात है हम आप जीव हैं परमात्मा हमारे साथ है। आप परमात्मा को अपने दूर क्यों भेजते जब आपको क्रोध आया आपकी मर्यादा का भंग हुआ आपकी साधुता भंग हुई तुम भगवान दूर हो गए। जब सीता से किसी कारण भगवान दूर हो गए और आपसे भी किसी कारण क्रोध में लोभ में मोह में आपकी शक्ति आपकी शांति जब दूर हो गई तो शांति मिलेगी कहाँ राम मिलेंगे कहाँ कौन है ये समझने की बात है। हम लोग खुद अशांति पैदा कर रहे हैं खुद दुख पैदा कर रहे हैं बाकी दुख का कोई अस्तित्व नहीं। हम कमरे में बैठे हैं प्रकाश है हमने खिड़की बंद कर दिया दरवाजा बंद कर दिया या अधिकार मैंने पैदा किया खिड़की खोलो दरवाजा खोलो हर चीज दिखाई पड़ेगी ये अंधकार नहीं दिखाई पड़ेगी। इसलिए दुख हमने पैदा किया क्योंकि विज्ञान करता है। अगर दुख का अस्तित्व होता तो किसी मंत्र से तंत्र से किसी सिद्धि से कभी नहीं जाने वाला था। ये मंत्र ये आपको स्वस्थ बनाता है आपको सहज बनाता है आपको बलवान बनाता है आपको प्रकाश देता है। ऐसे कमरे में प्रकाश आते ही अंधेरा भाग जाता है ऐसे गुरु के ज्ञान से जब आपको प्रकाश होता है तो आपका दरिद्र दुख और कमजोरी भाग जाती है बाकी इसका कोई अस्तित्व कब इसका अस्तित्व होता था मिटा ही नहीं सकते थे। या विचार करो आप क्यों पकड़े हैं दुख किसने कहा चिंता के कारण चिंता कल की है और आज की नहीं। इसलिए बार बार हमारा कृष्ण कह रहा है अर्जुन तो आज करते धर्म का पालन कर परिणाम भेद परिणाम भविष्य है। इसलिए समदर्शन क्या आज का दर्शन आज आपका क्या विचार है आज आप क्या चाहते हैं कल की चिंता में आज क्यों गवा रहे आप अपने अंदर खड़े हैं कि किसी दूसरे को लेकर आप अपने राम को दूर कर दिया कि अपने पास रखा धन की लालच में क्रोध में लोभ में मोह में। हमारे यहाँ छोटी छोटी कहानियां भी हैं छोटी छोटी कहानियों बता नदी में दो स्नान कर किसी कारण से किसी को क्रोध आया तो चांदाल जाकर फिर स्नान कर अरे कहा तूने कभी स्नान किया कहा कि स्नान करते समय मेरा चांदाल तो निकल गया था लेकिन आपने मुझे देखकर क्रोध किया मेरा चांदाल आपके अंदर आ रहा है इसे फिर नहाएगा क्रोध को चांदाल माना गया। छोटी छोटी कहानियों में कितना है भजनों में भी आपने सुना होगा कि पानी से पतला क्या है ज्ञान है अगर से तेज कौन है क्रोध है कितनी बार सुने होंगे अनुपल बहुत ज्यादा है भूमि से भारी क्या है पाप है काजल से ज्यादा काला क्या है कलंक है आप रोज सुन रहे हैं भजन और उसे जाते भी चल रहे इसीलिए कहा जाता है कि सुनते ही एक नो सब जो है केयर और नो यू मस्ट देखिए अंग्रेजी वर्ड पर यू मस्ट नो वाइस से नो आपको जानना चाहिए यू मस्ट नो वेर यू हैव टू से नो आप इतना जानना चाहिए कहा नो आप टीवी देखते हैं लेकिन ये भी जानना चाहिए क्या देखना चाहिए क्या नहीं टीवी में सब महाभारत में सब पात्र है लेकिन आप किस पात्र को पसंद करते हैं ये जानना चाहिए। हर आदमी राम बनना चाहता है लेकिन रावण का काम करता है हर आदमी राज देने के लिए चाहता है इसलिए जब जान लोगे ये दूध में जहर है इतना बढ़िया दूध होगा कभी नहीं पिए। हम लोग दूध का स्वरूप देखकर चाहे धन हो गए माया गुरु को उसके अंदर के जहर को नहीं समझ रहे। देखा गया दुर्योधन से पूछा गया धर्म जानता कहा जानता तो लगता क्यों नहीं जाना मिटाना मत में जानता मैं धर्म में जानता मत में मैं धर्म धर्म जानता हूं लेकिन मुझे सत्ता से मतलब है। धर्म से मिले तो धर्म करूंगा और धर्म से मिले यही जब सत्ता की धूप जागती है तो आदमी दुर्योधन हो जाता है। रूप की धूप जागती है तो सारी मर्यादा टूटती है और रावण बन जाता है। और जिसमें दोनों बातें रूप और सत्ता उनका क्या होता है। इसलिए पूरा विश्व कहता है कि परिस्थिति चेतना का निर्माण करेगी। पूरा विश्व मैं अपना स्वरूप मानता हूं मेरा लेकिन मैं अपनी तारीफ करना नहीं चाहता। मैं वैज्ञानिक हूं ज्योतिष भी मानता हूं सब मानता हूं। कोई चीज जो चीज में कोई वजन है मैं सब मानता हूं चाहे हिंदू की हो मुसलमान की जाए जो इंसानियत को बढ़ाए वो हर चीज को मानता चीज कितनी खराब हो लेकिन जो शैतान बनाए उसे मैं नहीं मानता लेकिन घृणा भी नहीं करता। जगत की रचना कितनी बार भीषण पितामह ने सोचा लेकिन फिर भी उनका मन कहा नहीं ये मेरा कर्म है ये दुर्योधन ऐसा ही रहेगा ये सपने मामा ऐसे ही रहेंगे इतना खाल लोगों ने दिया लेकिन थोड़ा यही मैंने आप से भी सीखा। बुरान माने कितने लोग मुझे भी घाव देते हैं लेकिन मेरा पिछला संबंध इसलिए नहीं छोड़ा बहुत घाव देते वर्तन करके व्यवहार करके क्या बता लेकिन मैं भी सहन कर रहा क्योंकि मेरा कर्म है समझ के सहन कर रहा यही मैं आपसे करता हूँ। चाहे आपका पुत्र हो कि पुत्री आप अपनी जगह ठीक रहिए लेकिन फिर भी पिछला कर्म आएगा और बांध चलाएगा वाणी चलाएगा बहुत कुछ करेगा लेकिन आप अपनी जगह है तो आपकी मुक्ति हो जाएगी लेकिन ऐसे लोगों का सत्यानाश हो जाएगा। चाहे कोई मैं ज्योतिष के बल पे नहीं जो भारतीय संस्कृति को समझा उसके भरेगा। इसलिए सब दर्शन का क्या विचार पहले अपने को समझ आप जो चाहते वही करो आप जो देना चाहते वही दो आप लेना चाहते फूल तो फूल दो आप चाहते कोई आशीर्वाद दे सत्य कर्म करो आप मान चाहते तो दूसरे का मान करो ये तो क्षण में कोई कुछ होता रहेगा जाता है। और एक बात कभी किसी राजवेदिस्तान में राजवेदिस्तान में आपकी शक्ति का क्षय हो जाता है वैसे में आप हाथ लाइए शिशुपाल में इतनी शक्ति थी लेकिन हमारा क्षेत्र का था इतनी गाली हो गई इतना तक माफी मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन शक्तिशाली आदमी क्रोध में अगर किसी का अपमान करता है तो अभी तो वैज्ञानिक कहते हैं 100 तो वो समय था अभी तो क्रोध में केवल 25 गालियां कोई दे तो उसका सत्यानाश हो जाता है 25 गालियों में 100 तो बहुत। इसलिए कभी आपको कोई गाली दे रहा है आप किसकी तरह हंसो और मेरी बात पर विश्वास करो उसका सत्यानाश अपने आप हो जाएगा। किसको सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको भी कुछ कहने की जरूरत नहीं अपने आप उसका करता है ये जगत चला चलता रहेगा कहा ना। इसलिए बालू भाई ने जो सुदर्शन की बात की इस पंडाल में बेटा भी बैठा है बेटी भी बैठी है नर भी बैठे हैं भाई भी बैठे हैं शिष्य भी बैठे हैं सुख चिंतक बैठे और आप लोग आए हैं तो जरा मन को टटोलना मन को देखना कि मैं इंसानियत को बढ़ा रहा हूं कि धन की लालच में शैतानियत बढ़ा रहा हूं। जब रावण का सत्यानाश हुआ दुर्योधन हुआ तो हमारा क्या होगा। अब थोड़ा सा व्यवहारिक बात करके साधना गया इसलिए मेरे क्रियात्मन दुख आए कि सुख आए, मान मिले कि अपमान मिले, लेकिन मैं अपने शिष्यों से सुपुत्रों से कहता तुम अपनी तरफ से खुशबू दो, सुगंध मान दो, भले कोई मान के भले अपमान करे। मेरे प्यारे शिष्यों अपनी तरफ से सबको सुख दो, भले कोई दुख दे। मेरे प्यारे शिष्यों हर चीज को अमृत मानो, भले राणा जैसा कोई जीत लाए, लेकिन आपका विश्वास आपका संकल्प है जिसको भी अमृत बना देगा। बस नई तरह से व्यवहारिक बात अब अंदर ये तैयारी जब हो गई तो आपका मन न राग में न द्वेष में नहीं था। निर्मल मन जन तो मर पावा, मोहि कपट कल क्षेत्र में पावा। या विचार कर ये व्यवहार की शुद्धि से कोई कुछ भी कहे, जब आप कहते हैं सुन करके नहीं सुनता, देख करके नहीं देखता, चल करके नहीं चलता, ये हमारी आपकी बात है सब इधर भूल के। जो सुनने लायक है सुनो, नहीं मत सुनो, जो देखने लायक है देखो, नहीं तो मत देखो, जो बोलने लायक है बोलो, नहीं तो मत बोलो, जहां जाने से प्रगति होती जाओ, नहीं मत जाओ, सुनो लेकिन विचार करो क्या इसमें मेरा विकास हो रहा, देखो क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं, बोलो क्या मेरी वृद्धि हो रही है, चलो क्या मैं साधना में आगे जा रहा हूं। इसका जवाब जब अंदर से आए हाँ ये ठीक है तो वही धर्म है। धर्म की परिभाषा को मत तोड़ो, ये परिभाषाएं हमारी आपकी बनाई, मैं आपसे नहीं कहता कि दूध पियो, लेकिन मैं कहता हूं साधारण में दूध पियो, आप पर मैं जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन स्वयं मेडिकल पॉइंट आप भूल सकते, इतने लोगों को दूध अनुकूल नहीं होता, तो दूध अनुकूल नहीं है तो घृणा मत करो मत पियो। कई लोग मुझे मिले ट्रेन में प्लेन में, स्वामी जी मैं नॉन वेज लेता हूँ, आप बगल में क्या करो, मैंने कहा खाने वाले को जब आनंद है तो देखने वाले क्या बोलते, खाओ मैं पूरा पारा खा जाओ, तो मेरे मेरे को क्या मुर्गी क्या पारा खा जाओ, मुझे क्या फर्क है। अरे स्वामी जी आप संभाल के बात, मैंने कहा अगर इस छोटी छोटी बातों का आप हम देखेंगे कि कौन ये खाता है, एक सेकंड के लिए भी शांति नहीं मिले, शांति अंदर है और बाहर ढूंढ रहे हो, ये ढूंढी नहीं खाए, फलाना नहीं खाए, ये प्रणाम कर इसी में आकर प्रत्यान होता है, खाने तो ढूंढी खाओ खाना खाओ मेरे सामने खाओ, मैं कहता हूँ सीधे खाना खाओ लाओ, मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई पाप लगने वाला नहीं। अरे खाने जब तेरे को नहीं पाप लगता देखने से मुझे क्या पाप, लेकिन जब घृणा करूंगा तो पाप लगेगा, तेरे ध्यान से भगाऊंगा तो पाप लगेगा, पहले सुधारना है, नहीं सुधरेगा फिर उसका कर्म क्या, तो भगाने क्या मतलब, यहाँ चोट लगी पहले दवा लगाता फिर अंत में डॉक्टर का था, पहले नहीं करना, हमारा किस समझाया नहीं समझा तब कहा चल तू पांच गाँव दे, नहीं दिया पांच गाँव सोचा जिसे, इसे हमारी संस्कृति बड़ी ऊंची है, कभी ने क्या कर दिया, कबीरा तेरी झोपड़ी जल सकीम के पास, जैसा जो करेगा भरेगा टूट गया उदास, मरने दो दुनिया घोषणा क्या जरूरत है, लेकिन हम दूसरों को ज्यादा चिंता रहे, कितने लोग मुझे कहते मेरे महाराज आप जा रहे थे मैंने प्रणाम किया आपने हाथ में ऊंचा किया, तो मैंने कहा मैं ये नहीं देखता कहाँ केला है कहाँ कौन है, मैं तो अपनी मस्ती में जाता, तुमने प्रणाम कर लिया कौन किया, और कहाँ कहाँ तक देखूँ केला प्रणाम कर रहा है कि कौन है, आप अपना काम कीजिए। एक नैतिक अवसर भी कहा था स्वामी जी आप यार मेरे मन को समझाइए, मैंने कहा क्या, कभी कभी जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा चित्र मिलता है मुझे स्वरूप नहीं माता बड़ा दुख होता है, मैंने कहा कौन सा चित्र है बताया, मैंने उसको बोला स्वामी जी मैं अपनी समस्या में इतना रहता हूँ कि मैं तो जब चलता हूँ तो समस्या में इतना सोचता कोई दिखाई नहीं पड़ता, और वो समस्या बना के बैठा एक जैसा मुस्कुरा अपनी समस्या, अगर नहीं भी सलूक किया था तो अपमान क्या किया। मेरे पास एक व्यक्ति आए एक बात उन्होंने कुर्सी मांगी। मैंने कहा इस समय तो एक ही कुर्सी है, आप ऊपर बैठिए, मैं नीचे बैठता, कोई बात नहीं। कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ बात नहीं। कहा मैंने आपके चेहरे से कहा कुर्सी दो, वो कहता गुरु जी से मिलो, उसने मेरा अपमान किया, कुर्सी उधर से क्यों नहीं दिया। मैंने कहा मैंने आपको आमंत्रण दिया था, मैंने आपको कुछ किया, कहा नहीं किया। तो आप ये बताइए अपमान आप खुद अपने मन में बना रहे हैं, क्योंकि कुर्सी मांग के नहीं आई तो अपमान, अगर नहीं मानते तो आपको कौन अपमान कर। इसलिए भाई जिधर योग बनो बिना मांगे मिलेगा, और बिना एक बने मांगोगे तो अपमान होगा। इसलिए अपमान तभी आता है जब आप नालायक हैं और मानते हैं और मिलता है। आप योग बोल रहे क्या, आप कलेक्टर बन के आओगे तो कुर्सी कम से आप ही दौड़ गया, लेकिन पट्टा वाले के लिए कुर्सी नहीं है। एक बात है उसको कहूंगे आप वही है, यही बात कही कहना चाहता, हमने क्या अपमान किया। आप कुर्सी मांगे नहीं मिली और कहा स्वामी जी से मिले था, इसमें क्या, यहाँ आने पर मैंने अपनी कुर्सी देने की बात की, तो आप पिछली कुर्सी याद कर रहे हैं। आज मैंने आपका मान किया तो याद रखिए, कभी देर से भूल भी हो गई हो तो आज को देखना पिछला न देखना, और हम कई बार पिछला ही देखते हैं, इसने ये कहा थे इसी में सौ साल हमारा गया। इसे तम दर्शन जीवन को संभालो, हम अच्छे हैं अच्छे रहेंगे, लेकिन जो बावर बावर रहेगा। स्वामी जी मेरा पड़ोसी कागड़े करा बोलता है, बड़े कागड़ा हाथ बनाए कि मन बनाए, भगवान ने आपको तोता बनाया कोपर, तो आप सीताराम बोलिए मेरे प्यारे, आप सीताराम छोड़ के क्यों काम काम करते हैं। इसलिए अगले जब भगवान कहे कि इसको सीधे कागड़ा ही बना दो तो तोता बनाने से कोई, हमारे ऋषि मुनियों का एक विचार सुना था, ये किसी पर भी घट सकता है दुनिया, मेरे परमात्मा ने मुझे पिछले जन्म में रोक दिया था, नर हो कि नारी, मुझे धन दिया था, मुझे पुत्र दिया था, मुझे पुत्री दिया था, मुझे अच्छा पिता दिया था, अच्छा भाई दिया था, अच्छा पड़ोसी दिया था, अच्छी लक्ष्मी दी थी, लेकिन जब हिसाब से परमात्मा ने मांगा तो पता चला रूप का दुरुपयोग किया कल्याणी, इसलिए हमें पुरुष बना दिया। परमात्मा ने हिसाब मांगा, हमने लक्ष्मी दी थी, लेकिन लक्ष्मी नारायण मां रखकर के पुताओ कभी शराब नहीं दिया, आप लक्ष्मी को मां मानते हैं और आपका पैसा मां का स्वरूप है, तो मां को शराब खाने में जीवन खाने में क्यों बैठाते हैं, अपनी मां को कोई बैठाएगा। इसलिए आपको गरीब बनना पड़ा, परमात्मा सोचा इसने अपनी माँ को जुए खाने बराबर बैठा दिया, बेच दिया, इसको बहुत अच्छा घर मिला था, लेकिन वहां गलत काम करता था, इसे झोपड़ी मांग गया। एक ही बात कहूंगा, हमारे पिता ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन पिता जो चाहता था मैंने नहीं किया, पिता चाहता था सबके लिए था, तेरा बेटा पढ़े लायक बने अफसर बने या जो बने अच्छा बने, और जब मैं अच्छा नहीं देना तो पिता ने घर से निकाल दिया। इसी तरह से परम पिता सब कुछ दिया था, लेकिन आपने उसको संभाला नहीं, इसलिए जन्म उसने छीन लिया, आपको नहीं दिया, बस इसलिए आपका कर्म है। पिता की दुआई मत कर, आपका एक भाई डॉक्टर है, पिता ने पैसा दिया, एक भाई को पैसा दिया पढ़ने के लिए, जाके गप्पा मारने लगा, जुआ खेलने लगा, मटर गर्ती करने लगा, नहीं लाइक बना तो बाप घर से निकल जाएगा। तो हमारे आपके लिए सोचिए है तो परम पिता सब कुछ जानता है, सब कुछ करता है। तो मेरे प्रिय आत्मन इतनी शुद्धता स्वास्थ्य करके फिर आगे बता, राजा इसको निकालो, इसके निकालने के लिए क्या है तरीका, साधना बताऊंगा, बड़ी सरल साधना बताऊंगा। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा आंख बंद करो, कान खोलो, बैठे हो कि चल रहे हो, भगवान की खोज मत करो। हमारा प्रभु कहता है जब लीलाओं से किसने सब में किस दिखा दिया, अरुण घोष ने दिखा दिया, रामकृष्ण हंस ने तब मैं माँ को दिखा दिया जो आप मानते हो तब मैं आप अगर राम मानते हैं तो तब मैं राम है आप सीता मानते हो तब मैं सीता है आप किस मानते हो तब मैं कृष्ण है आप राधा मानते हो तब मैं राधा है आप शिव मानते हैं तब मैं शिव है पार्वती मानते हैं तब मैं पार्वती है अब एक मनोवैज्ञानिक उदाहरण दे दूं आप सोने से राम बनाया आप सोने से कृष्ण बनाया सोने से शिव बनाया लेकिन आपका विज्ञान ही आता है अस्तित्व जब आकार में आता है आकार का नाम है लेकिन पूरा का पूरा सोना है आपने सोने से नाम बनाया तो पूरा नाम सोने का ही आकार से आप नाम मानते हैं आप सोने में से कृष्ण बनाया वो आकार से कृष्ण है लेकिन है तो सोना ही आप शिव बनाए लेकिन बड़े हाथ जोड़ता था जब सुनार इस आकार को गलाएगा तो राम का आकार गलेगा कृष्ण का आकार गलेगा शिव का गलेगा लेकिन सोने का आकार गलने वाला एक सच विपरा बहुधा बदंती सच एक अनेक है ये सब में वही है और विज्ञान कहता है जो अस्तित्व है कितना आकार ले, लेकिन मौजूद रहता है इसलिए विज्ञान के दोनों से करता हूँ हम सब परमात्मा में से आए अस्तित्व में से आए और जहाँ से आए उसका गुण लेकर आए आकार कुछ भी हो बेटा बेटी भाई बहन माँ लेकिन सब आज सब नर जो है शिव के स्वरूप है और हमारी बेटियाँ ये नारी जो है ये शक्ति का स्वरूप है दोनों के मेल से हमारा जन्म हुआ इसलिए हर में शिव और शक्ति का मेरा जन्म न शिव से है न शक्ति साधारण भाषा में हमारा आपके जन्म पिता से है रमा से दोनों से है और शिव शक्ति का स्वरूप है दोनों को लेकर किए है तो विज्ञान माना है भगवान शंकर का नारेश्वर रूप को विज्ञान मान रहा है उन्होंने बता दिया आधा स्वरूप नारी का आधा आप सब अर्ध नारेश्वर हो अर्थात आपके दोनों शक्ति है अब ये जो पूजा पद्धति चल हमारी बेटी पुरुष की पूजा करती मतलब राम के और हमारा सिद्ध अंबा जी की पूजा करती जबरदस्त वैज्ञानिक बात विज्ञान कहता है एक व्यवहारिक बात मेरा छोटा बेटा भी कहता है मुझे एक बहन चाहिए मेरी बेटी भी कहते भाई चाहिए क्यों ये विज्ञान की बात है अल्लाह ही बोल करता है प्लस का आकर्षण माइनस का माइनस का प्लस और प्लस प्लस माइनस माइनस ये बस इसलिए मेरे हाथ जोड़ के कहता कि पुरुष एक ऐसी अवस्था में आता है जहां पुरुषों को बढ़ने लगता है और स्त्री तो कम होने लगता है इसलिए पूजा इसलिए आकर्षण स्त्री कर जाता है अब हमारे ऋषियों ने सब नहीं कहा विज्ञान करता है पुरानी बात ये 12 साल की 12 साल में मेरा मेल जो है हार्मोन को बढ़ता है इसलिए आकर्षण बहन की तरफ जाता है मतलब फीमेल की तरफ और 4 साल के बाद फिर उसकी अवस्था बदल जाती है तो आप सब पढ़े लिखे समझिए आज विज्ञान मानता है कि हमारे मन में गलत विचार ना आए इसलिए शुरू से हमारी बेटी अगर पुरुष को अपना दिव्य अपना इष्ट मान के पूजा करेगी तो घर से निकलने के बाद कोई पुरुष दिखाई पड़ेगा तो वासना नहीं आएगी हमारा पुत्र सब में अम्बा जी देखेगा माता जी देखेगा तो जब घर से बाहर निकलेगा कोई नारी लड़की देखेगा तो उसमें वासना नहीं है आज पूरा विज्ञान कहता है भारत ने जबरदस्त बात बताई कि जो चीज है उसको आप खत्म नहीं कर सकते उसका रूपांतर कर सकते तो हमारी वासना को रूपांतरित करने के लिए शुरू में बच्चों को देवी उपासना बतानी चाहिए उसमें गायत्री मंत्र भी है अंबा जी का भी है सब और हमारे जो पुरुष है बालक है उनको गायत्री मंत्र के साथ अम्बा जी की वेद की किसी पूजा जो है रखनी चाहिए, नारी पूजा। और ये हमारे मन में जो सेल्स है 1,55,00,000 उसमें खाना पीना उठना बैठना सेक्स सब कुछ है, पशु में हमने, लेकिन सेक्स को सेल्स बनाने में, क्योंकि आप रामायण पढ़े तो वहां पर एक बात आई है, अगर रावण में उपासना होती तो कोई नहीं जीत सकता था, अगर सीता की उपासना करता तो सीता लंका से नहीं आती, वही बैठ जाती, लेकिन वासना ने उसका सत्यानाश किया। तो वासना को उपासना में कैसे लाए, वो पूजा पद्धति माइंड को इंगेज करना, और यही इंगेज करने के लिए पद्धति है। तो मेरे प्रिय आत्मन 111 पद्धतियां हैं, लेकिन सबसे सरल पद्धति भगवान मत बनाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मेरे पास आओ, किसी महात्मा के पास जाओ। लेकिन इसी आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे आप पुत्र है कि पुत्री, और नारीश्वर वाली बात, मेरे प्रिय शिष्यों और सुप्रिंद को, जब सब में नारायण है सब में सोना है तो आकार मत देखो, सब में उसी परमात्मा को देखो, सभी परमात्मा ये आकार में वही मौजूद है, इसे अलग से परमात्मा बनाने की जरूरत नहीं। जो कुछ देख रहे हो वो परमात्मा स्वरूप है, पर किसे लाश करोगे, किसे द्वेष करोगे, किसे ईर्ष्या करोगे। मैंने स्वप्न देखा कि पड़ोसी ने मुझे गाली दी, तो क्या झगड़े पर मैं जाकर उसको थप्पड़ मारता, क्योंकि मैं जानता हूं थप्पड़ मारने वाला स्वप्न में पड़ोसी नहीं मैं ही था, कोई दूसरा नहीं। तो जैसे सपने में पड़ोसी ने थप्पड़ मारा और झगड़े पर राज दिशा नहीं है, ऐसे गुरु के मन से जाग जाओ, ये दुनिया का कोई व्यवहार तुम पर असर करने वाला नहीं, कोई असर नहीं करेगा। सपने की कोई चीज जानने पर असर होती है, जनक ने स्वप्न देखा मैं भिखारी बन गया, मैं ये हुआ मैं वो हुआ, लेकिन जगने पर अरे मैं तो राजा ही। फिर असर पकड़ा है बताए कि परिस्थिति है, अगर ये भी सच है तो वो भी सच है, वो भी है, लेकिन तुम जिस स्वरूप को समझना चाहते हो वो समझे। तो मेरे प्रिय आत्मन हमारा जन्म माता पिता से है, माता पिता घर घर है, घर घर विज्ञान करता है, और विकार को धर्म के नाम से हमारे ऋषियों ने कहा, तो माता पिता का जो विकार धर्म के नाम से हमारे आपके सामने आया, हमारे पिता का विस्फोट हुआ, मेरी माँ ने स्वीकार किया और वो शून्य था, वही शून्य बढ़ते बढ़ते छठे महीने वानर बनता और वानर से फिर नारी बनते, तो विज्ञान भी सिद्ध कर दिया जिस शून्य में से आप चले माता पिता के संजोग से, तो शक्ति के संजोग से जन्म के बाद सब में वही है। इसलिए मेरे प्रिय आत्मन चराचर जड़ पेड़ पौधे सभी घर कर से पैदा, यही समय चेतना है। अब विज्ञान भी मान गया कि चेतन में से जड़ कैसे आया, ये चेतना है, नाखून क्या है, ये जड़ है, नाखून काटिए कहाँ पता चलता है, तो जैसे चेतन में से जड़ पैदा हुआ उसी चेतन में सब पैदा हुए है, इसलिए सब परमात्मा के स्वरूप है, सब परमात्मा के। इसलिए एक सर साधना बना, आप अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा, परमात्मा समझ करके आप कमजोर ना बनिए। अगर समाज में घर में कोई रावण जैसा है, कंस जैसा है, दुर्योधन जैसा, समझाओ उसे, और नहीं समझे तो खुद कदम न भांग। उस समय का नियम और था, वर्तमान को देखना, अगर कोई नहीं समझता चाहे गांव की बात हो, चाहे घर की बात हो, समाज या देश की बात हो, आज के समझाने से कोई नहीं समझता, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, जो नेचर है अपना खाता नहीं छोड़ता, तो आपके पास अपना गुरु है, चाहे मनीषानंद हो या कोई भी गुरु हो। और याद रखिए, अच्छा गुरु इतनी सुंदर सलाह देगा कि दुनिया में कोई नहीं देगा। इसलिए माता का भी थोड़ा स्वार्थ हो सकता है, पिता का भी हो सकता है, लेकिन गुरु केवल अपने सिर का स्वार्थ देता है। रामायण महाभारत से सारी दुनिया मान गई कि गुरु के सामने रहने वाला अपने शिष्य को देता, बेटा तुम्हारी विजय हो, ये केवल गुरु ही बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोल सकता। गुरु के सामने लड़ोगे तो भी गुरु कहेगा, अपने शिष्य के सामने हारने पर गुरु को लज्जा नहीं आती, क्योंकि तो मैंने उसको इतना सिखाया, मेरा चेला आचार्य बन जाए, शंकराचार्य मुझे खुशी हो। आपका बेटा मामलतदार से, आप मामलतदार है, आपका बेटा कलेक्टर बने आपको खुशी होगी, आप कलेक्टर है, आपका बेटा कमिश्नर बने खुशी होगी। तो याद रखिएगा, अगर अच्छे माता पिता हो, और गुरु तथा होने चाहिए, अगर अच्छे माता पिता गुरु हो, अपने पुत्र पुत्री को, अपने शिष्य को आगे बढ़ाने की बात करोगे, और आगे बढ़ाना ये आपका स्वभाव है, लेकिन फिर भी जिस राष्ट्र की तरफ मोह में न पड़ना, समाज को अगर बचाना है, ये भारतीय संस्कृति का आधार पर जो विश्व के चिंतक है वो कर रहे हैं, मनीषानंद नहीं कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये कहानियों को सीखो, जीने को जिस्मत करो, जिस राष्ट्र पुत्र के मुंह में मारा प्रजा का सत्यानाश। अब यही मैं आपसे कहता हूं, आपके उंगली में कैंसर हुआ, ये मेरी उंगली कट करोगे तो पूरा शरीर कैंसर हो खत्म हो जाओ, इसलिए हमें दवा देनी है, हमें पुत्र को समझाना है, हमें शिष्य को समझाना है, बेटा बेटी को समझाना है। अगर सुधर जाते हैं तो ठीक है, लेकिन सुधारने वाला सत्यानाश है, खुद कोई कदम न उठाओ। आज का कानून देखो, समाज को देखो, और नहीं समझ में, न्याय और समाज समझ में नहीं आए तो गुरु के पास आओ। गुरु भूत भी जानता है, वर्तमान भी जानता है, भविष्य, और गुरु जो सलाह देगा वो आपका भूत भी संभाल लेगा, वर्तमान संभालेगा, और वर्तमान इतना अच्छी तरह संभालेगा कि आपका भविष्य भी बिगड़ने वाला। ये शक्ति इसलिए गुरु की इज्जत होती है, रोटी खाने के लिए नहीं। तो बहुत सरल ढंग से त्योहार मनोविज्ञान विज्ञान लेकर मेरे प्रिय आत्मनाथ हिंदुओं, मूर्ति पूजा करनी चाहिए, और वही मूर्ति सब में नजर आनी चाहिए। किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, किसी की नकल नहीं, अलग से परमात्मा मत बनाओ। सुबह उठते ही पहले माँ है, पिता है, पड़ोसी है, इनमें परमात्मा देखो, राग द्वेष करो या विचार करो। एक नया शिष्य कहता है, स्वामी जी अगर माला न लाओ तो आशीर्वाद देंगे कि नहीं। मैंने कहा एक व्यवस्था, मेरे बेटे मेरे लिए माला कभी मत लाना, लेकिन दर्शन करके जब वापस जाना तो एक माला ले लेना, इसी माला के आधार पर कितने घरों का पोषण हो रहा है, नहीं तो माला की जगह फिर ऐसा कम दिखेगा, कम दिखेगा। ये मनी का सर्कुलेशन है, मैं आपसे कहता हूँ मेरे लिए कभी माला मत लाना, नहीं ये कभी नारियल मत लाना, लेकिन दर्शन करके वापस जाते समय पहले माँ के लिए, पिता के लिए, लेकिन आज के समय देख रहा हूँ माता पिता की क्या इज्जत हो गई मैं देख रहा हूँ, लेकिन पत्नी के लिए माला जरूर लेके जाना, तो कम से कम सुबह रोड के नाश्ता पर कर मिल जाए। ये मैं आपसे कहता हूँ, माँ बाप की क्या हालत लोग बना रखा मैं देख रहा हूँ, इसलिए समय देख के कहता हूँ कि समय आपका न बिगड़े तो पत्नी के हाथ में माला दोगे तो 24 घंटे नजर में रहेगी, फिर जो कहोगे बड़े प्यार से हिंदू वहां पे भी मन होगा। तो सब दर्शन जो कुछ हो रहा है तुम्हारा कर्म, लेकिन कैसी भी गत परिस्थिति आए अपने कर्म धर्म को मत छोड़ो। धर्म पालन में अगर अयोध्या छोड़नी पड़ी तो धर्म पालन में ही अयोध्या वापस आ गए। धर्म का पालन न करने से लंका चली गई। इसे याद रखिएगा, आप सज्जन है, धर्म है, आप किसी गुरु के शिष्य है, और गुरु तभी खुश होगा चाहे कबीरदास की बात हो, चाहे भालू भाई की बात हो, चाहे महेंद्र भाई की बात हो, ये जनपद की बात हो, नाम तो बहुत है, किसी की बात हो, लेकिन आपका सुख, आपकी समृद्धि बाहर और अंदर दोनों देख करके जितना गुरु खुश होगा उतना कोई नहीं। केवल समृद्धि नहीं, पैसा नहीं, अंदर की इंसानियत, ये पैसा किसी गलत काम में ना रहे, मिलाने का काम करे, हमारे हाथ में शक्ति है तो प्रणाम करे, आशीर्वाद दे, किसी को धक्का देकर कोई मन गिराए। हमारे पास रूप है, उसमें परमात्मा का दर्शन, दूसरे की नहीं, अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करो। जैसे इस समय बताओ, इस समय जितने लोग बैठे हैं भगवान मान लो, बहुत ही सुंदर, और इससे सुंदर आपका हृदय है, लेकिन वो बात आप जानते हो, मैं नहीं बता सकता। तो हृदय अरे मेरे शिष्यों सुनो, मैं तो आपको बहुत सुंदर देख रहा हूँ, लेकिन आज बंद करके विचारों अपनी सुंदरता को देखो, और अंदर अगर हाथ कहता है कि मैं बाहर से सुंदर गुरु जी बोल रहे हैं, और आपका मन कहता है मैं अंदर से सुंदर हूँ, तो मैं कहता हूँ भगवान आप स्वयं है, और किसी भगवान को खोजने की जरूरत है। आई आत्मा धर्म प्रज्ञा हम परमात्म, लेकिन हम तो सत्यमय, तो आपका पड़ोसी भी भगवान है, क्योंकि आपके विचार रखते हैं, और पड़ोसी को दुश्मन माना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक गुलजार 100 लीटर दूध को जहर बना देता है, ऐसे एक लाख द्वेष सारी स्थाई उत्पन्न कर देता है। मैं तो ताश वगैरह नहीं खेलता, लेकिन थोड़ा जानता हूँ, चाल किसी की हो, आप लोग जो ताश खेलते चाल किसी की हो, लेकिन देख लीजिए आपके पास इक्का है और चाल में चिड़िया है, चिड़ी है, अगर दुखी है तो आपके इक्का चाल दुखी से मात खा जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, लोग की चालों को ज्यादा का चाल बात बहुत ऐसा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, इसलिए भोगने में बहुत बहुत ज्यादा। हमारी अच्छाई, हमारी समृद्धि, हमारे रूप को न काम करने वाले इतने मीठे ढंग से चाल चल के हमारी एकता को, हमारी एकता को, हमारी मर्यादा शक्ति खत्म करते हैं, उसका भी ध्यान। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्रिकेट के शौकीन हो, आप क्रिकेट खेलते हैं, मेरे प्यारे बच्चों आज तो हमारी बेटियां भी खेल रही, बहुत आगे जा रहे हैं। आज जब क्रिकेट में बैटिंग करते हैं तो केवल एक आपके साथ दौड़ता है, बाकी आगे पीछे जो खड़े हैं आउट करने के लिए खड़े हैं, आपकी मदद के लिए नहीं, और लाखों लोग ताली बजाने के लिए खड़े हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और शिष्यों, केवल एक आपके साथ दौड़ेगा जो आपका गुरु है, लेकिन कब, जब आप चलोगे तब। आज रुक गए इशारा किया तो गुरु क्या करे, आप तो चले जाओ, आउट हो गए, आप आउट हो गए तो गुरु दूसरे चेले को बुलाए, एक चेला आउट हुआ तो, लेकिन गुरु नहीं आउट होगा, क्योंकि गुरु बैठक चले गए, गुरु बैठे बैठक चले तो आउट हो गए, इसे ये गुरु बैठक नहीं करते, लेकिन जो आउट होता कहता था दूसरा ध्यान से कहता। इसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं इतना ही कहूंगा, बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आपको जीवन में चौका छक्का बनाना है, और चौका छक्का के लिए कितनी तैयारी, कितनी एकाग्रता, कितने अपने लक्ष्य पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कुछ बनना चाहते हो, बाउंड्री के बाहर जाना चाहते हो, दुनिया आपके नाम पर ताली पी गए, तो याद रखो अपने जीवन कितना ऊंचा उठाओ, इतना ऊंचा उठाओ कि आसमान होते ही लोगों की बाउंड्री से बाहर चले जाओ और दुनिया तुम्हारी धन में भी और अध्यात्म में भी। भालू भाई आज दिन अच्छा है, आनंद जी के यहाँ गया, डॉक्टर साहब के यहाँ गया, इतने अच्छे अच्छे सब लोग आए हैं, आपने सबका सम्मान किया, बुरा मान लिया, ये जो आज सम्मान हुआ है वो मनीषानंद के चेलों का नहीं है, मनीषानंद के दिए हुए संस्कार का है। कोई भी, क्योंकि बहुत नाम है, लेकिन दो चार नाम तो ले ही लो, ऐसा है, बहुत प्यारे हमारे बमरौली वाले अमृत भाई, बिहारी भाई के नाम लिया, मायन भाई के नाम लिया, गणपति के फोन आता पहले कहता ओम जय ओम गणपति, और पूछे से कहता आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। दीपक भाई ये सभी है तो किसी के नाम वगैरह भूल जाओ क्षमा कीजिएगा, आज जो भी सम्मान हुआ है वो समितानंद के संस्कार, और मैं कहता हूँ कि अभी बहुत आपके बीच में आऊंगा बालू भाई, आपका सम्मान, हमारे श्री छबीलदास का सम्मान, महेश भाई का सम्मान, हमारे शिष्यों का सम्मान हुआ, ये सम्मान इतना बड़े कि मैं और छबीलदास महेश भाई बैठे रहे और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री आकर आपका सम्मान करें, वो भी मैं देखना था, वो भी मैं देखना था। आश्रम बहुत बढ़ेगा, उसके साथ इंसानियत बढ़ाइए, और इंसानियत बढ़ती जाएगी तो याद रखिएगा कहीं कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आश्रम भी बढ़े, हमारी मानवता इंसानियत बढ़े, हमारा मान सम्मान बढ़े, सब कुछ बढ़ते हुए परम पिता परमेश्वर से हे परम पिता परमेश्वर आप मेरे में है, आप सब में, फिर भी मैं एक बालक हूँ, एक बालक रुद्राक्ष से प्रार्थना करता है, एक बालक रुद्राक्ष से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा आपके स्वरूप जो नर नारी यहाँ बैठे इनको इतनी शक्ति दो कि विगत से विगत परिस्थिति में आप याद आते रहो और चलते रहे, कभी थक कर के हाथ माथे पर रखकर अपने गुरु की बदनामी न करें, अपने गुरु का इलाज रखे, अपने गुरुओं की लाज रखे, अपने गुरुओं की लाज रखे, अंदर बाहर बढ़ो बढ़ो बढ़ो, परमात्मा आपके साथ है, मैं उसका स्वरूप हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप ही आउट हो गए तो मैं क्या, मैं आउट मतलब क्रोध आ गया, लोभ आ गया, आउट हो गए तो गुरु क्या करेगा। इसलिए आप सबको वंदन करते हुए और बहुत आनंद हर तरह से लगा, आप सबको वंदन करते हुए अगले साल के लिए फिर निमंत्रण देता हूँ, तो अगले साल तक सब इकट्ठे रहेंगे, चिंता करने कोई जरूरत नहीं।
दया कृपा करके हम सबकी समता बनी रहे आपके श्री चरणों में, बस यही प्रार्थना।
एक बात कहूं कि आज के धुप की चाल न चले,
धुप की चाल
उठा के रखे भाई
गुरुदेव,
हालेलुया।